मुगले आजम। मुगले आजम हिंदी फिल्म जगत में एक ऐसी ऐतिहासिक फिल्म है जो लगातार 3 साल तक चली, और इतना ही नहीं, इसे यूरोप और यूएसए में हो रहे 7 अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया। क्या आपको पता है मुगले आजम जिस वक्त बनी थी उस वक्त इसका बजट था 1,50,00,000 रुपए।
मैं हिंदुस्तान हूँ, हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है, गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ, और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा, नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया, मजहब और रस्म व रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है, और अब इसके दरो दीवार में गुजरे हुए दिनों के कुछ अफसाने रहते हैं।
ये फिल्म है शहजादा सलीम और शाही दरबार में नाचने वाली अनारकली की मोहब्बत की दास्तान। एक ऐसी मोहब्बत जो शहंशाह और शहजादे के बीच में जंग की वजह बन जाती है। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है।
शहंशाह अकबर, जिनके सामने सारा हिंदुस्तान झुकता है, वो आज खुद औलाद की आरज़ू में एक फकीर हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं,
शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस फकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की, जहां पनाह अर्ज़-ए-इलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई, अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। ये दोनों जहान के मालिक अकबर को दुनिया में बेनाम और निशान न बना।
कुछ ही दिनों में अकबर की ये फरियाद पूरी होती है, उनको एक चांद सा बेटा होता है। जब ये खुशखबरी एक कनीज अकबर को सुनाने आती है, वो उसे एक अंगूठी बतौर निशानी देते हैं और एक वादा करते हैं कि वो जिंदगी में एक बार शहंशाह से कुछ भी मांग सकती है।
मुबारक हो, मुबारक हो, दिल्ले इलाही को मुबारक हो। खुदा ने महारानी की गोद आबाद की, दिल्ले इलाही को चांद सा बेटा और मुगल सल्तनत को वलीहद मुबारक हो।
अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुदा की रहमतों का पैगाम लेकर आई हो। लो लो ये अंगूठी, बतौर निशानी अपने पास रखो। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा।
वक्त के साथ साथ शहजादे थोड़े बड़े होते हैं। उनकी आदतों को बिगड़ते देख शहंशाह मान सिंह को घर से दूर ले जाकर सलीम की परवरिश का हुक्म देते हैं।
मान सिंह, इसके सर से माँ के प्यार का रेशमी आंचल हटाकर इसे लोहे का खौद पहना दो। इसे ले जाओ और जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में इसकी परवरिश करो।
महारानी जोधा हर पल अपने बेटे सलीम से मिलने को तरसती रहती है। फिर वो वक्त आ ही जाता है जब 14 साल बाद सलीम को वापस महल में बुलाया जाता है।
चुप खड़े हुए सोच क्या रहे हो भगवान? सलीम की सूरत दिखा दो। जिले इलाही ने दुर्जन सिंह को हुक्म दिया है कि साहिब आलम को जल्द से जल्द अपने साथ लेकर वापस आए। तुम आंसू के लिए हंसी का संदेशा लेकर आई, मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगी। ये कम है महारानी, मैं चाहती हूँ साहिब आलम मोतियों पर जलकर आए।
ये भी कम है बाहर, मैं सलीम के नाम पे तुझे हर बात का अधिकार देती हूँ। मेरा बच्चा परसों के बाद घर वापस आ रहा है, मैं महाबली से कुछ दिनों के लिए उसे मांग लूंगी। उसने बाप की राजनीति देखी, मां का प्यार नहीं देखा।
बाहर संतराज के पास जाती है और कहती है कि साहिब आलम के लिए एक बुत तैयार कर दो, मगर संतराज मना कर देता है। वो कहता है कि उसके बुत राजा महाराजाओं के लायक नहीं है, मगर बाद में वो राजी हो जाता है और एक बुत बनाकर देने का वादा करता है। सलीम महल में आ पहुंचते हैं। सलीम अपने माँ से मिलने आते हैं।
माँ आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए, मैं आ गया।
सलीम, सलीम कितने बड़े हो गए, मैं तुम्हारी सूरत दिल के करीब देखने की आदी थी। जरा झुको सलीम, जरा झुको। बड़ी सुरमा हो गए हो तुम, कितनी बेदर्दी से मेरा खून मिट्टी में मिलाते रहे हो। ये न सोचा माँ के हृदय पर इन जख्मों को देखकर क्या बीतेंगे। कभी रणभूमि से माँ को आवाज देकर देखते, तलवारों के छनकारों से लोरियां गूंजने लगती, रणभूमि माँ की गोद बन जाती। लेकिन तुमने मुझे कभी न पुकारा। सलीम मेरी जान, बाहर हटाने से मेरी नजर लग जाएगी।
शहजादे के महल में आते ही बाहर उनसे कहती है कि वो उन्हें एक बहुत खूबसूरत बुत दिखाना चाहती है और वो उन्हें साथ लेकर आती है। समय पर बुत तैयार नहीं होता, इसलिए संतराश नादिरा नाम की एक लड़की को बुत के जगह पर खड़ा कर देता है। नादिरा की खूबसूरती को देखकर शहजादे उसके दीवाने हो जाते हैं।
हमें देखकर ये कौन छुप गया है बाहर?
छुपा नहीं, छुपाया गया है साहिब आलम।
क्यों?
संतराश का यह दावा है कि जब यह मुजस्मा बेनकाब होगा तो
बेखौफ होगा। कहो, कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं।
उसका यह दावा है कि इस मुजस्मे को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकालकर उसके कदमों में रख देगा।
संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है। हम उसके फन का गुरूर देखना चाहते हैं।
महाबली का यह हुक्म है कि साहिब आलम इस मूर्ति को न देखे।
क्यों?
राजजोशी का यह कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शगुन होगा। नकाब कुशाई कल सुबह महाबली के सामने होगी।
संतराश का दावा राजजोशी का शगुन और इस मुजस्मे पर पड़ी हुई नकाब, हम सुबह का इंतजार कैसे करेंगे दुजन? संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताब पत्थर हिला सकता है। बुतों की खुदाई तस्लीम करने को जी चाहता है।
साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा,
मगर वफा परस्ती की दाद भी मिल जाएगी।
अगली सुबह शहंशाह और शहजादे सभी आते हैं बुत को देखने के लिए। बाहर को मालूम रहता है कि ये बुत असली नहीं है। वो शहजादे से कहती है कि बुत पर लगे पर्दे को तीर से गिराया जाए। सलीम का तीर निशाने पे लगता है और वो पर्दा गिरता है। शहंशाह उस बुत को देख करके उसकी तारीफ करते हैं, मगर जब बुत बोल पड़ती है तो शहंशाह भी अचंभे में पड़ जाते हैं। शहंशाह को संतराश का ये अंदाज बहुत पसंद आता है और वो अपनी बेगम को कहते हैं कि इस लड़की को अपने कनीजों में शामिल कर लो, और उस लड़की को एक नाम देते हैं, अनारकली।
सुभान अल्लाह, मालूम होता है जैसे किसी फरिश्ते ने आसमान से उतरकर संगे मरमर में पनाह ले ली है।
कनीज फरिश्ता नहीं, इंसान है।
मगर तुझे बुत बनने पर किसने मजबूर किया?
आपकी सल्तनत की एक जिद्दी संतराश ने, जो गुमनामी के पर्दे से बाहर आना नहीं चाहता।
سنگتراش کا انوکھا فن یقین امداد کے قابل ہے، لیکن تیر چلتے وقت تو خاموش کیوں رہی؟
کنیز دیکھنا چاہتی تھی کہ افسانے حقیقت میں کس طرح بدلتے ہیں.
بہت خوب، ہم تیرے حوصلے کی داد دیتے ہیں. رانی، آپ اسے اپنی کنیزوں میں داخل کر دیجئے اور ہم اسے انارکلی کا خطاب عطا کرتے ہیں. اور کل کرشن جنم کے جشن میں انارکلی
رادھا کے لیے مناسب رہے.
شیخو، تم نے ہمارے منہ کی بات چھین لی.
اور اس طرح شہزادے اور انارکلی کے بیچ میں ایک رشتہ قائم ہونے لگتا ہے.
شہزادے کے سواگت میں بہار اور انارکلی اپنے ہنر سے محفل جماتی ہیں اور یہ خوبصورت سا قوالی پیش کرتی ہیں.
محبت کرنے والوں کا ہے بس اتنا ہی افسانہ، تڑپنا، چپکے چپکے آہ بھرنا، گھٹ کے مر جانا. کسی دن یہ تماشا مسکرا کر ہم بھی دیکھیں گے. تمہارا خیال اس پھول کا مستحق ہے. تمہارا نظریہ یہ ہے انارکلی، محبت ہم نے مانا زندگی برباد کرتی ہے، یہ کیا کم ہے کہ مر جانے پہ دنیا یاد کرتی ہے. کسی کے عشق میں دنیا لٹا کر ہم بھی دیکھیں گے. تمہارے سمے یہ کانٹے آئے ہیں.
سہ نصیب، کانٹوں کو مرجھانے کا خوف نہیں ہوتا.
ذل الہی کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ سلیم اپنے سیاسی فیصلے لینے میں لاپرواہ ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ترنت اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں. یہ خبر دینے جیسے ہی راجہ مان سنگھ کا بیٹا درجن سلیم کے پاس پہنچتا ہے، سلیم اپنی محبت سریا کو بیان کر رہے ہوتے ہیں.
جیسے ہی درجن سلیم کو ذل الہی کا حال سناتا ہے، سریا درجن کو ہلکے سے چھیڑتے ہوئے یہ حسین گانا گاتی ہے.
سب دنیا والے اے عشق، یہ سب دنیا والے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، بیکار کی باتیں کرتے ہیں. پائل کے غموں کا علم نہیں، پائل کے غموں کا علم نہیں. جھنکار کی باتیں کرتے ہیں، جھنکار کی باتیں करते हैं ये इश्क ये सब दुनिया वाले।
सुरैया भागकर अनारकली के पास जाती है और सलीम का हाले दिल उसे बताती है। यहाँ से शहजादे और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है।
बाहर सलीम की मल्लिका बनने का ख्वाब देखती है और इसलिए सलीम और अनारकली की नजदीकी बर्दाश्त नहीं कर पाती और शहंशाह के पास जाकर वो अनारकली और सलीम के बीच में जो कुछ भी है वो सब बता देती है।
अनार की कलियां, आजकल महल के चमन में अनार की इन कलियों पर बहार है जो अब तक जिले लाही की निगाहों से महरूम है।
अनारकली भी हमारी बारियाबी से महरूम है। हमारा थका हुआ दिमाग शायद उसके दिलकश रक्त से आराम महसूस करे। उसे हाजिर करो।
वो इस वक्त हाजिर नहीं हो।
बाहर की बातें सुनते ही शहंशाह खुद अपनी आंखों से ये नजारा देखने के लिए सलीम की तरफ बढ़ते हैं और बाहर की बातों पर यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं। अनारकली को कैदखाने में रखने की सजा सुनाई जाती है।
इसी बात को लेकर शहजादे और शहंशाह में बहस छिड़ जाती है।
कौन
है वो? कौन? आजम जिनके हुक्म से खुदा की बख्शी हुई सांसें भी सीने में घोंट दी जाती हैं।
अदब से बात करो सलीम।
एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
क्यों नहीं की जाएगी?
खामोश। एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
वो कौन सा फर्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है?
महाबली का हुक्म तुम्हारा फर्ज है।
ये फर्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सजा जरूर है।
लेकिन हमारी बख्शी हुई ये अजीम शान सजा तुझे भगतनी होगी।
तो फिर मासूम अनारकली को भी कैद करने के बजाय यही अजीम शान सजा दीजिए।
हमारे फैसलों पर तुझे कोई इख्तियार नहीं।
लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आजाद न की गई तो कैदखाने की ये रात अनारकली पर नहीं अकबर आजम की सारी जिंदगी के मंसूबों पर भारी गुजरेगी।
और वहाँ कैद में अकेली अनारकली बैठे बैठे ये खूबसूरत सा गाना गुनगुनाती है।
मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए।
शहंशाह अनारकली को रिहा तो करवाते हैं पर इस शर्त पर कि वो सलीम को यकीन दिलाए कि उसकी सलीम से मोहब्बत झूठी थी। सलीम अनारकली से मिलने बागीचे में जाते हैं। सलीम से मोहब्बत करती पर शहंशाह के हुक्म के बारे में सोचते हुए अनारकली अपनी इस हालत को इस गाने के जरिए बयां करती है।
हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। हकीकत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती।
सलीम को लगता है कि शहंशाह ने उन दोनों के प्यार को अपनी मंजूरी दे दी है, शायद इसीलिए उन्होंने अनारकली को रिहा करवाया है। बाहर सलीम से कहती है कि अनारकली बेवफा है, उसने सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए प्यार किया है।
सलीम बाहर की बातों पर यकीन कर लेते हैं और अनारकली से बड़ी बेरुखी से पेश आते हैं।
अहबे आलम तशरीफ ला रहे हैं।
तुम यहीं ठहरो। आखिरकार अकबर आजम की गर्म निगाहों से वो मोम पिघल गया जिसकी तू बनी हुई थी और उसके साथ तेरी मोहब्बत का वो कागजी जेवर भी जलकर खाक हो गया जिसे तू पहनकर मेरे सामने इतराती फिरती थी। अनारकली,
जिसे कैदखाने की एक ही कठिन रात के अंधेरे ने खा लिया। तगाबाज खनीज तो अनारकली नहीं तो उसका नाम चुराकर कैदखाने से भाग आई है। तू मेरी अनारकली नहीं।
हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं।
यकीनन नहीं। अकबर की बुजदिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया।
पर यही बेरुखी अनारकली का जज्बा और बुलंद कर देती है और मुगल दरबार में वो गीत गाती है जो आज तक सारे हिंदुस्तानियों की जुबान से उतरा नहीं है।
इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या।
इस गाने में अनारकली सबके सामने अपने प्यार का इजहार करती है जिससे शहंशाह बहुत नाराज हो जाते हैं और फिर से अनारकली को कैद में रखने का हुक्म सुनाते हैं। सलीम अनारकली को गिरफ्तार होते देख फिर से शहंशाह से बहस करते हैं।
दुर्जन सलीम को समझाने की कोशिश करता है कि ये वक्त उनके नासमझी का नहीं है, बल्कि उनको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ये पूरा मसला सुलझ नहीं जाता। अनारकली की माँ सलीम से अनारकली की जान बचाने की मिन्नतें करती है।
मेरी नातिन को बचाइए घायल में आलम, मेरी नातिन को बचाइए घायल में आलम, मेरी नातिन को बचाइए घायल में आलम, मेरी लाडली कैदखाने की दीवारों से टकरा टकरा कर जान दे देंगे।
वो अगर यूं मर जाएगी तो यह हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा, यह हिंदुस्तान एक मकबरा अजीम बन जाएगा, इसमें मौल सल्तनत की लाश दफन होगी। और अगर कैदखाने का दर न खुला तो कैदखाने की दीवारों को गिरना होगा।
बाहर तभी वहाँ कैदखाने की चाबी लेकर आ जाती है। सलीम अनारकली को रिहा करवा कर भागने की लाख कोशिश करते हैं पर हिरासत में ले लिए जाते हैं। अनारकली को फिर बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। दुर्जन की बात को मानकर सलीम जंग के लिए रवाना हो जाते हैं पर उनके पीछे यहाँ शहंशाह अनारकली की शादी संतराश यानी किसी और से करवाने के बारे में सोचते हैं। ये बात सलीम को जैसे ही पता चलती है वो बगावत का ऐलान कर देते हैं।
जिल्ले इलाही बगावत की जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं तभी महारानी जोधा उन्हें बरसों पुरानी तलवार देने की रस्म निभाने से मना करती हैं। तहखाने में बैठे बैठे अनारकली ये खूबसूरत सा गीत गाती है।
मेरे मुश्किल पुशा फरियाद है, सरकार मदीना।
जंग के मैदान में शहंशाह एक बाप बनकर सलीम को मनाने की आखिरी कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब हो जाते हैं। जंग के दौरान दुर्जन अनारकली को महल से छुड़ाकर सलीम की हिफाजत में लेकर आ जाता है। सलीम जंग हार जाते हैं, पर शहंशाह उन्हें जान से मार नहीं पाते। सलीम से अनारकली को फिर मांगा जाता है, पर वो उसे देने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं।
मजबूरन शहंशाह शहजादे सलीम को सजाए मौत सुनाते हैं।
तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, तुम
और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं।
खामोश।
अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम नहीं लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी।
इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्ज़िम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया, लिहाजा मां बदौलत मुजरमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देने। आज कोई हमारे रहम और दयादिली को आवाज न दे।
एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। जब मुअर्रख सलीम के खून से अनारकली और उसकी मोहब्बत की तारीख लिखेगा तो उसमें शहंशाह अकबर की मौत पहले होगी।
सलीम मौत के दरवाजे पर खड़े हैं और संतराश ये गीत गा रहा है।
वफा की राह में आशिक की दहाती है, खुशी मनाओ मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद।
तभी वहाँ भागती हुई अनारकली आ पहुँचती है। अनारकली को देखते ही राजा मानसिंह सलीम को बचा लेते हैं, पर अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा देने की सजा सुनाई जाती है। जब अनारकली से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है वो कहती है,
अनारकली दस्तूर है कि मरने वाले की आखिरी आरजू पूरी की जाती है, अगर कोई आरजू हो तो महाबली के हुजूर में अर्ज करो।
कनीज की आरजू ज़िल्लाही के अख्तियार में नहीं।
हमारे रहम करम का दायरा इतना तंग नहीं जिसमें कनीज की आखिरी आरजू भी न समा सके। बयान कर।
मरने से पहले कनीज वाले का बनना चाहती है।
अंजामे कार, तेरे लबों पर आज तेरे दिल की आरजू आ गई।
शहंशाह अनारकली की ये आरजू पूरी करते हैं, पर उसे एक ऐसा फूल दिया जाता है जिसमें बेहोशी की दवा डाली गई है। अनारकली से कहा जाता है कि ये फूल ले जाकर शहजादे को दे, ताकि उसे सूंघते ही वो बेहोश हो जाए और अनारकली को दीवार में चुनने से रोक न सके।
ये दिल के लगे कम क्या होगे, ये इश्क भला कम क्या होगा। जब रात है ऐसी मतवाली, जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा, फिर सुबह का आलम क्या होगा।
ये सजा सुनते ही अनारकली की माँ भागते हुए शहंशाह के पास जा पहुँचती है और अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है। अनारकली की माँ वही कनीज है जिसे शहंशाह ने जिंदगी में एक बार कुछ भी मांगने का हक दिया था और वो अपने इस हक में अपनी बेटी की जिंदगी मांग लेती है।
अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। सबको ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, पर तभी शहंशाह अनारकली की माँ को एक खुफिया रास्ते के जरिए अनारकली से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। पर वो उनसे ये वादा लेते हैं अनारकली जिंदा है ये बात राज ही रहनी चाहिए। और इस तरह से शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने अनारकली को जिंदगी भी दी और किसी को ये बात पता न चली, यानी कि इस तरह से उन्होंने इंसाफ भी किया।
मेरे चाहने वाले शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अनारकली को जिंदगी बख्श दी और दुनिया की नजरों में जुल्म और बेरहमी का दाग अपने दामन पर ले लिया। मैं उस शहंशाह के इंसाफ की यादगार हूँ जिसे दुनिया मुगले आजम के नाम से याद करती है।